स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 27 अक्टूबर और दिन रविवार। हरियाणा में मनोहर लाल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, दुष्यंत चौटाला होंगे उप मुख्यमंत्री।
भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी तथा 7 निर्दलीय विधायक एक सरकार बनाने का हमने दावा पेश किया।
महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच रस्सा कशी बरकरार। अयोध्या में दीप उत्सव पर एक खास रिपोर्ट।
दुनिया के हर सनातन धर्मावलंबी के लिए अयोध्या की पहचान उसी रूप में है जैसे अन्य मतावलंबियों के लिए अपने अपने पवित्र स्थलों की पहचान है।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। चंडीगढ़ के राजभवन में आज दूसरी बार मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ ही जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ब्रिटेन में बुधवार को एक ट्रक में मिली 39 लाशों के मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। उत्तरी आयरलैंड के रहने वाले 25 वर्षीय मॉरिस रॉबिन्सन को सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा। उन पर हत्या, मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। 3 अन्य संदिग्ध भी ब्रितानी पुलिस की हिरासत में हैं और 5वें को डबलिन से गिरफ्तार किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि मारे गए लोगों का संबंध वियतनाम से है। शनिवार को मारे गए लोगों की याद में वियतनाम में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। सभा में शामिल एक महिला ट्रान थी हुंग ने कहा कि गांव के लोग इस त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को विदेश भेजने के लिए उनके माता पिता को अपने घरों को बेचना पड़ा था या उन्हें बैंक में गिरवी रखना पड़ा था ताकि उनके बच्चे रोजी रोटी कमा सकें। अब वे सभी दूर दराज के एक अजनबी देश में मरे पड़े हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चे भी वैसी ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे कि वहाँ के लोग गुजारते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इन माता पिता को ये भी नहीं पता है कि वो अब कैसे जिंदा रहेंगे। ट्रान थी हुंग के शब्द। कैलिफोर्निया में और 50,000 लोगों को अपने घरों को खाली करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के जंगलों में लगी आग को तेज हवाएं और भड़काएंगी। सोनोमा में पहले ही आपातकाल की घोषणा कर दी गई है जहां 100 वर्ग किलोमीटर के इलाके में आग फैल गई है। सोनोमा काउंटी के सुपरवाइजर जेम्स गोर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, आज रात हवाओं के इधर आने से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। किनकेट आग 25,000 एकड़ में फैली हुई है और हम लोग 2 दिन से उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम की जानकारी देने वाली राष्ट्रीय एजेंसी ने आज रात आने वाली तेज हवाओं को ऐतिहासिक करार दिया है। उसे निपटना सभी के लिए एक चुनौती होगी। मिनटों में ये आग 10 से 15 एकड़ में फैल जाएगी। सुपरवाइजर जेम्स गोर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने नई सरकार बनाने और सामाजिक सुधारों को लागू करने के लिए अपनी पूरी कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया है। पिनेरा ने कहा है कि उन्होंने सड़क पर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों की मांग को सुन लिया है। शुक्रवार को चिली की राजधानी सेंटियागो में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शांतिपूर्ण रैली निकालकर सामाजिक न्याय की मांग की थी। एक हफ्ते पहले ये प्रदर्शन मेट्रो किराया बढ़ाए जाने के खिलाफ शुरू हुए थे। सरकार ने किराए में बढ़ोतरी का फैसला तो वापस ले लिया, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन नहीं थमे। देश में बढ़ती गैर बराबरी और रहन सहन के खर्च में बढ़ोतरी की चिंताओं को लेकर ये प्रदर्शन जारी हैं। धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर द्वारा समर्थित इराकी सांसदों के एक समूह ने घोषणा की है कि वे सरकार पर प्रदर्शनकारियों की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए संसद के भीतर ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रहे हैं। शनिवार को इराक की राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी अपने पद से त्यागपत्र दे दें। करीब 3 हफ्ते पहले शुरू इन प्रदर्शनों में अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। 9 कैटलन अलगाववादी नेताओं को जेल भेजे जाने के खिलाफ बार्सिलोना में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें और अधिक बढ़ गई हैं। बहुत से प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर चीजें फेंकी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अक्टूबर की 27 तारीख और दिन है रविवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा से। चंडीगढ़ के राजभवन में आज दूसरी बार मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ ही जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल राजभवन में जाकर मनोहर लाल ने राज्यपाल को 57 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र सौंपा। सुनिए बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के पूरे 4 दिन बाद आज चंडीगढ़ के राजभवन में 2 बजे के करीब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की कल चंडीगढ़ में हुई बैठक में खट्टर को विधायक दल का नेता चुना गया। साथ ही आज उनके बाद महज 11 महीने पुरानी पार्टी जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुक्रवार को जेजेपी के समर्थन देने की घोषणा के 1 दिन बाद ही मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मिलने राजभवन पहुंचे थे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राजभवन में मुलाकात के बाद मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों से कहा,
सरकार बनाने का हमारा जो क्लेम है वो हमने प्रस्तुत किया और इसमें सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी तथा 7 निर्दलीय विधायक, ऐसे कुल मिलाकर 57 विधायकों का ये जो दल है एक सरकार बनाने का हमने दावा पेश किया।
गुरुवार को आए चुनाव परिणामों में किसी को बहुमत नहीं मिला था। 90 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31 और जेजेपी को 10 सीटें मिली थी। उसी दिन हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा बीजेपी को अपना समर्थन देने दिल्ली पहुंचे, लेकिन उनकी छवि के कारण कांग्रेस समेत कई दलों ने बीजेपी का विरोध किया। कल चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि गोपाल कांडा का समर्थन लेने का सवाल ही नहीं उठता।
स्पष्ट करना चाहता हूं, गोपाल कांडा से पार्टी कोई समर्थन नहीं ले रही है, दैट्स ऑल।
वहीं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला की भी कई दल आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार करके चुनाव लड़ा और अब वो उन्हीं के साथ ही जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों में जेजेपी के साथ गठबंधन करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा,
बहुत आश्चर्य की बात है कि पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना दुष्यंत चौटाला जी ने की। पूरे चुनाव में बेरोजगारी और अपराधीकरण को मुद्दा बनाया, पूरे चुनाव में किसानों की बदहाली को मुद्दा बनाया और फिर उसी पार्टी के साथ आप जाकर समझौता करते हैं, तो निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा होगा आज हरियाणा के लोगों के मन में।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि राज्य के विकास के लिए कांग्रेस, जेजेपी, INLD और निर्दलीय विधायकों का साथ आना जरूरी है, लेकिन इस मांग को दरकिनार करके जेजेपी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य में 2 प्रगतिशील पार्टियों का मिलन है और कांग्रेस ने राज्य को लूटा है।
हरियाणा प्रदेश में आज कांग्रेस का नेतृत्व वो व्यक्ति कर रहे हैं जिनने 10 साल तक प्रदेश को लूटा, प्रदेश को आगे लेकर चलने, और मैं मानता हूँ 2 प्रोग्रेसिव सोच के लोग मिलकर प्रदेश को आगे लेकर।
जेजेपी ने जहां कल बीजेपी को अपना समर्थन पत्र सौंपा, वहीं कल ही जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट रहे दुष्यंत के पिता अजय चौटाला को तिहाड़ जेल से फरलो मिल गई। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो आज राजभवन में अपने बेटे की उप मुख्यमंत्री पद पर होती ताजपोशी को देखेंगे। मोहम्मद शाहिद, PBC दिल्ली।
तो सरकार तो आज बन जाएगी, लेकिन सब लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर हरियाणा में बीजेपी और दुष्यंत चौटाला का ये साथ कितने दिनों तक चलेगा। यही सवाल पूछा हमारे साथी शाहिद ने डॉक्टर सतीश त्यागी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं।
जिस तरह के हालात चुनावी नतीजों के बाद उभरे थे, उस समय जनता नायक जननायक पार्टी के सामने कोई विकल्प था नहीं है, यानी कि दुष्यंत चौटाला जी के पास कोई लंबा चौड़ा विकल्प नहीं था, चूंकि उनकी 10 सीटें थी मात्र और भारतीय जनता पार्टी 40 पे आके टिक गई थी, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन थी, या तो वो विपक्ष में बैठे और अगर सत्ता में भागीदारी करनी है तो उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना होगा। हरियाणा में धरातल पे इस चीज को लेकर बहुत जो आलोचना भी उनकी इस बात को लेकर हो रही है कि उन्होंने जो लोगों से अपने समर्थन जुटाया था उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर वो सरकार बना रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक राजनीति में सब कुछ चलता है और वो कल शपथ ग्रहण होगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे और शायद 2 मंत्री और भी उनके शामिल हों, तो गठबंधन की सरकार का कोई पहला कोई नया अनुभव नहीं है। हरियाणा में इस तरह की सरकारें बनती रही हैं। इनके जो दादा थे चौधरी देवीलाल जी परदादा, और उनकी सरकारें भी 77 में हों, 1987 में हों, या ओम प्रकाश चौटाला जी की 1999 में सरकार बनी थी इनके दादा की, तो वो भी गठबंधन की सरकार थी। और एक बार चौधरी बंसीलाल और भाजपा ने मिलकर भी गठबंधन की सरकार बनाई थी। तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा के लिए कोई नई चीजें हैं, गठबंधन की सरकारें यहाँ रही हैं। अब सवाल यही उठता है ये गठबंधन कितना टिकाऊ होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की छवि एक शहर केंद्रित पार्टी की है जो आमतौर पर व्यापारियों के इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेशन करती है, और जननायक जनता पार्टी की राजनीति पूरी तरह से देहात केंद्रित है, किसान और तमेरे वर्ग का वो नारा देते रहे हैं। तो सैद्धांतिक रूप में देखें तो दोनों दलों के बीच में एक बड़ा फर्क है, लेकिन कभी ना कभी तो इस तरह की शुरुआत होनी ही थी।
आपने कहा कि इनकी राजनीति ग्रामीण वर्ग की रही है, गाँव तक सीमित रही है, लेकिन हमें ये बताएं सतीश जी के JJP अभी एक साल पुरानी पार्टी है और अब उन्होंने सीधा BJP से हाथ मिला लिया है, जिसके खिलाफ वो अब तक प्रचार करते रहे थे, तो अब आगे आप कैसे देखते हैं JJP को उसके भविष्य के तौर पर?
देखिए, तकनीकी रूप से भारत ये जो जननायक जनता पार्टी है बिल्कुल 11 महीने पुरानी है, लेकिन इसे हम अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो चौधरी देवीलाल की विरासत को रिप्रेजेंट करती है पार्टी। तो पार्टी की जो विचारधारा है, जो पार्टी का जो आइकॉन रहे चौधरी देवीलाल, वो बहुत पुराने हैं, और इस पार्टी में ही इंडियन नेशनल लोकदल में ये विभाजन हुआ था, इसके दो हिस्से हो गए थे। तो असल में तो दुष्यंत चौटाला अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे और उस विरासत की लड़ाई लड़ रहे थे, चौधरी देवीलाल की विरासत की लड़ाई। उसमें अब ये बिल्कुल साफ हो गया कि इंडियन नेशनल लोकदल, जिसका नेतृत्व वर्तमान में अभय सिंह चौटाला करते हैं, ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे, वो लगभग उसका सफाया हो गया है।
भविष्य कह रहे हैं देवीलाल की विरासत को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अभी इस सरकार का क्या भविष्य देखते हैं? क्या ये एकदम पूरी फुल फ्लैज 5 साल तक चलेगी, या फिर क्या ये जाटों के मुद्दे लेकर आएंगे और किसानों के मुद्दे लेकर आएंगे? क्या लगता है आपको, क्या दुष्यंत सरकार के अंदर भी कोई एक आवाज बन पाएंगे?
बिल्कुल, अभी जो शुरुआत हुई है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर सहमति हुई है, इस तरह की सूचना मेरे पास है। और ये भी कहा गया है कि जो इनका बड़ा मुद्दा था कि एक तो बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए देंगे दुष्यंत चौटाला, और दूसरे किसानों के कर्जे माफ करने की बात की, और तीसरी बड़ी मांग ये थी जो दुष्यंत ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि यहां रोजगार में हरियाणा के ही लोगों को 75% लोगों की भागीदारी हरियाणा के लोगों की होगी। तो इस तरह की सूचनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीनों बड़े मुद्दों पर सहमत होगी, अपनी सहमति दे दिए। तो वैचारिक रूप से या कोई संकल्प पत्र की दृष्टि से कोई बहुत बड़े मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई टूट फूट होगी, क्योंकि ये सारी चीजें सरकार के गठन से पहले लगभग तय हो चुकी हैं।
तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सतीश त्यागी, और अब चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में BJP और शिवसेना के बीच गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर रस्सा कशी जारी है। कल महाराष्ट्र के नव निर्वाचित विधायक प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे के निवास से बाहर निकलकर पत्रकारों से कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना और BJP के बीच 50-50 के फॉर्मूले पर बात तय हुई थी, और इस पर लिखित आश्वासन के बाद ही BJP शिवसेना की सरकार बन सकेगी। BBC संवाददाता अभिजीत श्रीवास्तव ने वरिष्ठ पत्रकार समस खड़स से बात की, पूछा कि अब आगे क्या होगा।
शिवसेना जो है सत्ता में तो जाएगी, शिवसेना सत्ता से बाहर रह नहीं सकती है, लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक जिस तरीके से शिवसेना को दबाया गया है BJP से, उस तरह की राजनीति अब नहीं हो सकती है, क्योंकि BJP अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना सकती है। उनके पास मतलब जो नंबर आए उससे इंडिपेंडेंट को लेकर भी सरकार नहीं बन सकती, तो उनको शिवसेना को लेना कंपल्सरी हो गया, उनको एक पॉलिटिकल कंपल्शन उन पर है। तो शिवसेना बहुत हार्ड बार्गेन करेंगे, और उसमें वो पहले तो चीफ मिनिस्टर के लिए अपना दावा कर देगी। BJP को कितना मानती है पता नहीं है, लेकिन उसके बाद जो पावरफुल पोर्टफोलियोज है, जैसे होम है, अर्बन डेवलपमेंट, रेवेन्यू है, PWD है, इनके बारे में वो बार्गेन करेंगे, क्योंकि 2014 से 2019 तक का आप अगर कार्यकाल देखेंगे उनका, तो उनमें उनको हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन कंट्रोल, ऐसे 2-3 ही पोर्टफोलियोज थे जो आप कह सकते हैं कि मतलब जिसका थोड़ा बहुत कुछ वजूद है पॉलिटिकली। इस बार ये नहीं होगा, और इस बार पावरफुल पोर्टफोलियोज उनको देने पड़ेंगे। शायद अगर चीफ मिनिस्टरशिप के लिए BJP राजी ना हो तो फिर होम मिनिस्ट्री शिवसेना मांगेगी, और उस पर बहुत हार्ड बार्गेन होगा। तो ये मुश्किलें तो BJP की तो बढ़ गई है।
इन दोनों पार्टियों के बीच में जब सरकार में थी अभी 5 साल तक, तो आपस में झगड़े होते रहे हैं, वो कौन कौन से मुद्दे थे जिसपे इनके बीच में आपस में इस तरह के झगड़े होते रहे हैं?
शिवसेना ने 5 साल में वो सत्ता में रहने के बावजूद भी वो अपोजिशन पार्टी है, इस तरह से ही उनका बर्ताव रहा है। वो काफी चीजों के ऊपर से झगड़े हुए, प्याज की जो न्यूनतम भाव है उसके ऊपर से झगड़े हुए हैं, अभी जो हाल में मुंबई में आरे का पेड़ काटे गए उसके ऊपर से झगड़ा हुआ है, और काफी मसलों के ऊपर से किसानों की आत्महत्याओं के ऊपर से शिवसेना ने उनके ऊपर कड़ी टीका की है, कई मसलों के ऊपर उनके झगड़े होते रहे हैं। तो झगड़े तो उनके होते रहेंगे। आप चुनाव के बाद का सामना जो उनका अखबार है वो अखबार देखोगे तो उन्होंने तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो शरद पवार जी को दिया है।
बिल्कुल, वही मैं भी पूछना चाह रहा था कि शरद पवार क्या अभी कोई किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी अच्छे खासे नंबर हैं।
शरद पवार जो है वो उनके उनसे बात करने के बाद लगता है कि वो फाइटिंग मूड में है, और शरद पवार जो है उन्होंने कहा भी है कि मैं 5 साल जो है ये संघर्ष की राजनीति करूंगा, इतने साल से मेरा युवाओं के साथ जो जुड़ाव था वो थोड़ा कम हुआ था, इस चुनाव के कारण वो जुड़ाव बढ़ा है। तो उनको लेकर के जो अलग अलग सवाल है, ग्रामीण युवाओं के है, शहरी युवाओं के है, उन सवालों के ऊपर संघर्ष करना ये मैं जारी रखूंगा, ये उन्होंने कहा है। और अगर ऐसा संघर्ष होता है और वो पॉइंटेड संघर्ष होता है तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से 2014 और 2019 के बीच में अपोजिशन की एक वीक छवि गई थी वैसी छवि 2019 से आगे रहेगी।
मुंबई से ये थे वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स। और अब चलते हैं बिहार। भारतीय रेल के निजीकरण के खिलाफ शुक्रवार को बिहार के कई शहरों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार भी किया। सुनिए नीरज प्रियदर्शी की ये रिपोर्ट।
यह शोर और नारे लगाने की आवाजें उन छात्रों की है जो रेलवे के निजीकरण के विरोध में सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों की संख्या में जुटे इन छात्रों का विरोध इस बात को लेकर भी था कि निजीकरण की इसी कोशिश के कारण रेलवे में सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। शुक्रवार की सुबह 11:30 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन देर शाम तक चला। रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ हुई। करीब 10 घंटे तक सासाराम से गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन रद्द रहा। आखिर में पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि रेल प्रशासन ने निजीकरण की बातों को महज अफवाह बताया है। मुगल सराय के DRM किशोर कुमार BBC से कहते हैं,
अफवाहों का खंडन किया है अपने फेसबुक ट्विटर पोस्ट पे भी, अपने मीडिया से भी, हर तरीके से जिस तरीके से कर सकते हैं। मैंने अपने ट्विटर पोस्ट पे भी अभी लिखा है कि अभी तो हमने 709 आदमियों का 2 महीने पहले रिक्रूटमेंट किया फ्रेश फेसेस मार्केट से।
वैसे तो शुक्रवार को बिहार के दूसरे शहरों में भी रेलवे के निजीकरण को लेकर विरोध हुए, मगर सासाराम में विरोध इतना उग्र क्यों हो गया? कौन थे विरोध करने वाले? रोहतास के SP सत्यवीर सिंह कहते हैं,
तो प्लेटफॉर्म पर भी पुराना इतिहास रहा है यहाँ का, कई बार इस टाइप से हुआ है। देखिए, इन लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से सब चल रहा था, ऑर्गेनाइज किया था लोगों ने। अब जब लीडरलेस क्राउड होता है उसमें कोई लीडर नहीं होता है व्यक्ति, और एक बार इंसाइट हो गए ऑलरेडी तो समझ भी इतनी नहीं होती है कि इसका परिणाम क्या होगा। तो उन लोगों का एक ही कहना था कि हमारी बात पहुंचनी चाहिए, हमको मीडिया पर विश्वास नहीं है।
प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई करने के कारण छात्र अब कुछ भी बोलने से डरने लगे हैं। ऐसे कई छात्रों से हमारी बात हुई जो नाम नहीं छापने की शर्त पर रेलवे प्रशासन से अब भी सवाल करते हैं। मसलन, अगर निजीकरण की बात अफवाह है तो रेलवे में अचानक से नई सरकारी नौकरियों का आना क्यों रुक गया है, और सरकार खुलकर क्यों नहीं बताती कि जिस PPP मॉडल पर रेलवे को चलाने की बात हो रही है वो जमीन पर कैसे लागू होगा, उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी कितनी होगी? हमने DRM किशोर कुमार से भी ये सवाल पूछे, मगर कुमार ने इन पर कुछ भी बोलने से यह कहकर इनकार कर दिया कि वे सरकार के एक मुलाजिम सिर्फ हैं। जवाब के लिए हमें सरकार से ही बात करनी होगी। नीरज प्रियदर्शी, BBC पटना।
और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चुका है और भूमिका अखबारों के साथ मौजूद हैं, बताएं।
जी इकबाल जी, पहली खबर तो यही है कि खट्टर आज दूसरी बार लेंगे शपथ। ये खबर हर अखबार के पहले पन्ने पर है और पहली खबर के भी तौर पे है। इसके अलावा एक इसी से जुड़ी एक दूसरी खबर है कि 24 घंटे के भीतर ही अजय चौटाला को मिली फरलो। अजय चौटाला जो हैं वो दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री का पद आज ग्रहण करेंगे उनके पिता हैं, और इन्हें अजय चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद थे। तो इस खबर को आज जो शपथ ग्रहण समारोह है उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हुए थे और अभी भी शिवसेना और बीजेपी के बीच जो है वो जैसा आपने बोला रशाकशी बनी हुई है। तो आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। शिवसेना चाहती है कि 50-50 पर हो, लेकिन बीजेपी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है और उसने बोल दिया है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई समझौता नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो 328 बार घुसपैठ की कोशिश हुई कश्मीर में पिछले साल। तो ये पिछले साल के आंकड़े हैं, यानी साल 2018 के जम्मू कश्मीर में 328 बार घुसपैठ की कोशिश की गई है और जिसमें से 143 प्रयासों में वो सफल भी रहे हैं। गृह मंत्रालय की ये वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर अखबारों में ये खबर है। अब डाक मतपत्र के जरिए कर सकेंगे मतदान, यानी चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने दिव्यांगों और 80 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को डाक मतपत्र से मताधिकार देने के लिए निर्वाचन के संचालन नियम में परिवर्तन किए हैं। और छोटी दिवाली थी कल और आज दिवाली है, लेकिन जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे कि ग्रीन पटाखों से प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा और माहौल बेहद प्रदूषण भरा रहा और लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। तो इसके अलावा एक छोटी सी खबर ये भी है कि 80% लोग अनार से होते हैं बीमार। दिवाली का मौका है तो पटाखों की बात करना जायज़ है। तो 80% लोग जो होते हैं वो अनार बम है उससे बीमार पड़ते हैं। इकबाल,
बहुत शुक्रिया भूमिका आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और आपको बता दें कि पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की भी समीक्षा होगी आज, लेकिन पहले चलते हैं अयोध्या। अयोध्या में कल शाम दीपोत्सव के का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरयू नदी से सटे राम की पौड़ी पर 5.5 लाख दिए प्रज्वलित किए गए, जो पिछले साल दिवाली के अवसर पर रोशन किए गए 3 लाख दीपों से कहीं अधिक थे। कार्यक्रम में रामायण की झांकियां भी थी। हमारे सहयोगी फैसल मोहम्मद अली कल शाम अयोध्या में थे, सुनिए उनकी भेजी रिपोर्ट।
सरयू किनारे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पधारे, फिर आए राम, सीता और लक्ष्मण, और केंद्रीय और सूबाई मंत्रियों की मौजूदगी में आर्टिस्टों ने भरत मिलाप के सीन को फिर से अदा किया। जय जय श्री राम के नारों के बीच राम सीता का रथ स्टेज पर पहुंचा, जहां उन्हें कुर्सियों पर बिठा दिया गया। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष स्टैम्प जारी किया। योगी आदित्यनाथ ने बात की मोदी काल में भारत के फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ उठते कदम की, सरकारी योजनाओं की और अयोध्या को उसकी पहचान दिलाने की।
अयोध्या को अयोध्या की पहचान दिलानी है और अयोध्या की इस पहचान को दिलाने के लिए हम सब इस बारे में कह सकते हैं कि दुनिया के हर सनातन धर्मावलंबी के लिए अयोध्या की पहचान उसी रूप में है जैसे अन्य मतावलंबियों के लिए अपने अपने पवित्र स्थलों की पहचान है।
चर्चा होगी इस बात पर कि उनका इशारा किस तरफ था, क्या पिछले दीपोत्सव में उनके मंदिर था, मंदिर है और रहेगा वाला बयान इस दफा इस रूप में पेश किया गया है, या वो दूसरे पक्ष यानी मुसलमानों को संकेतों में विवादित स्थल पर दावा छोड़ने को कह रहे हैं, तब जबकि सुप्रीम कोर्ट जमीन के मालिकाना हक पर किसी दिन भी फैसला सुना सकती है। योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर अयोध्या से कटे रहने का भी आरोप लगाया।
पहले की सरकारें अयोध्या नाम से डरती थी, आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है 2.5 वर्ष में मैं स्वयं 1.5 दर्जन बार अयोध्या आ चुका हूँ।
राम नाम, राम नाम, राम नाम में जादू ऐसा, राम नाम मन भाए।
वीना भटनागर दीपोत्सव 2019 की मुख्य अतिथि ने यूं तो बड़ी मीठी बातें की, लेकिन उनके भाषण में महात्मा गांधी और फिजी की धर्मनिरपेक्षता का जिक्र भी आया। अब तक आरती और द्वीप प्रज्वलन का समय आ पहुंचा था और जब दीयों के जलने के बाद बत्तियां धीमी की गईं तो राम की पौड़ी दीयों की रोशनी में नहा सी गई। अब बारी थी विदेशी ट्रुप्स की रामलीला पेश करने की। फिलीपींस से आई मंडली की बैले शैली में तैयार रामलीला की कोरियोग्राफी ने इसे बिल्कुल आधुनिक रूप दे दिया था। फैसल मोहम्मद अली, BBC, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।
और अयोध्या के बाद अब चलते हैं पाकिस्तान। आप जैसा कि जानते हैं कि हर रविवार को हम वहाँ से छपने वाले जो उर्दू अखबार हैं उनकी समीक्षा पेश करते हैं, तो इस हफ्ते वहाँ के उर्दू अखबार क्या कहते रहे हैं, जानिए अपूर्व कृष्ण से।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते पाकिस्तान की एक विपक्षी पार्टी जमीयतुल इस्लाम पाकिस्तान FGUT या JUI के आज़ादी मार्च और भारत प्रशासित कश्मीर से जुड़ी खबरें सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही। पाकिस्तान 27 अक्टूबर को कश्मीरियों के समर्थन में काला दिवस मना रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था और पिछले 72 वर्षों से भारत प्रशासित कश्मीर में भारतीय सेना कथित तौर पर जुल्म कर रही है। अखबार दुनिया के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा भारत प्रशासित कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा रहेगा। उधर पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने पिछले 7 महीनों में 60 भारतीय सैनिकों को मारा है और भारत के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी सेना ने 27 फरवरी से अब तक 60 भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है और पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय सेना प्रमुख गैर जिम्मेदाराना बयान देकर क्षेत्र की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना प्रमुख का बयान अपने सियासी आकाओं को राजनीतिक लाभ दिलाने के लिए है। अखबार जंग के अनुसार अमरीकी सांसदों के एक गुट ने अमरीका में भारतीय राजदूत को एक खत लिखकर कहा है कि भारत प्रशासित कश्मीर पर राजनीतिक बातचीत के लिए भारत एक रोडमैप तैयार करे। खत में सांसदों ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए पूछा है कि कश्मीर के मामले में भारत ने जो आधिकारिक जानकारी दी है वो वहां के असल हालात से बिल्कुल अलग है। खत में सांसदों ने यह भी पूछा कि विदेशी पत्रकार और अमरीकी सांसद भारत प्रशासित कश्मीर का दौरा कब कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को हटाए जाने की खबर भी पाकिस्तान के अखबारों में प्रमुखता से छपी है। अखबार दुनिया के अनुसार भारत ने अपनी नाकामी पर कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को वहां से हटाकर गोवा का राज्यपाल बना दिया है। अखबार के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीबी को कश्मीर का गवर्नर बनाया है। अखबार दुनिया के अनुसार गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं और मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मुर्मू उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। और अब बात आजादी मार्च की। पाकिस्तान की एक विपक्षी पार्टी और पाकिस्तान के सबसे बड़े धार्मिक गुट जमीयतुल इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान गुट ने 27 अक्टूबर से आजादी मार्च निकालने का फैसला किया है। इसका मकसद प्रधानमंत्री इमरान खान की नीतियों का विरोध करना और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना है। सरकार ने JUI से अपील की थी कि वो आजादी मार्च नहीं निकालें। JUI को दूसरी विपक्षी पार्टियों PPP और मुस्लिम लीग नवाज का समर्थन हासिल है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। दूसरी तरफ सरकार से बातचीत करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने भी एक रहबर कमेटी बनाई है। अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक पहले 2 दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन शनिवार शाम तक सरकार और मार्च के आयोजकों में समझौता हो गया। 27 अक्टूबर को कराची से मार्च की शुरुआत होगी।
तो पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की समीक्षा कर रहे थे अपूर्व कृष्ण। और अब चलते चलते सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। चंडीगढ़ के राजभवन में आज दूसरी बार मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ ही JJP नेता दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ब्रिटेन में बुधवार को एक ट्रक में मिले 39 लाशों के मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। कैलिफोर्निया में और 50,000 लोगों को अपने घरों को खाली करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के जंगलों में लगी आग को तेज हवाएं और भड़काएंगी। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने नई सरकार बनाने और सामाजिक सुधारों को लागू करने के लिए अपनी पूरी कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया है। इथियोपिया में एक जाने माने कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री अबी अहमद पर तानाशाही के रास्ते पर चलने का आरोप लगाया है। कैथोलिक पादरियों ने चर्च के भीतर ब्रह्मचर्य की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए शादीशुदा पुरुषों को दूर दराज के इलाकों में स्थित चर्च में पादरी बनाने की अनुमति देने के लिए आग्रह किया है। BBC समाचार।
तो नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली दीपक जसरोटिया ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।